Good evening, everybody. In this quarantine period, when we are all isolated in our homes, our honorable guide, Dr. Mehta, has found a way in which we are hearing him live and getting some idea and getting some subject matters on the topic sampling.
Welcome you all in this afternoon session.
Thank you, sir.
Thank you, sir.
Please, sir.
Thank you.
Stay safe. Stay healthy.
You too, sir.
I would like to cover, because you all people are PhD course students, so aap sabhi ke liye mujhe aaj morning mein request aayi thi ki sampling par kuch baat karu main. Sampling hindi mein kehte hain isko hum log pratidarshan.
Ji
sampling kya hai? Sampling ke bare mein bahut sari concept jo hain, do types ke sample hote hain. एक होता है फाइनाइट पॉपुलेशन और दूसरी होती है इनफाइनाइट पॉपुलेशन. हिंदी में बोलते हैं इसको हम लोग परिमित जीव संख्या, अपरिमित जीव संख्या. फाइनाइट पॉपुलेशन इज काउंटेबल, इसको हम गिन सकते हैं. मैंने कहा कि उज्जैन के कॉलेज में 6000 विद्यार्थी हैं, ये क्या हो गई? फाइनाइट पॉपुलेशन हो गई. और जो दूसरे सैंपल होता है वो होता है क्या? इनफाइनाइट पॉपुलेशन, अपरिमित संख्या बोलते हैं. पर मैं ये कहूं कि नदी में मछलियों की संख्या कितना है, क्या बन जाएगा वो? इनफाइनाइट पॉपुलेशन. आई आस्क यू टू काउंट नंबर ऑफ फिशेस इन ए पाउंड इन ए रिवर, इट विल बिकम इनफाइनाइट पॉपुलेशन. क्लियर? क्लियर?
यस
सर. यस सर.
एक लाइब्रेरी में गिनना है संख्या पुस्तकों की, इस लाइब्रेरी में इतनी पुस्तकें हैं, तो आप बोलेंगे सर 500 बुक्स हैं, 600 पुस्तकें हैं, क्या हो गया वो?
फाइनाइट पॉपुलेशन.
लेकिन जब आप रिसर्च करने जाएंगे तो आपको जो रिसर्च के अंदर वैल्यूज पैरामीटर्स काउंट करना पड़ेंगे, तो हमेशा आपको अपने पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल का क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट करना पड़ेगा. आप लोग जब मार्क फील्ड रिसर्च करेंगे, टॉपिक आपका फाइनल हो जाएगा पीएचडी का आरडीसी के बाद में, आरडीसी के साथ में, तो आप जब रिसर्च करेंगे, फील्ड रिसर्च करेंगे, फील्ड वर्क करेंगे, तो आपको सैंपलिंग की जरूरत बहुत पड़ेगी.
ओके सर.
तो बिहेवियरल रिसर्च जो होता है, या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होता है, या नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, उसमें पॉपुलेशन और सैंपल बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. हिंदी में इसको कहते हैं जीव संख्या, और कई बार इसको हम शुद्ध हिंदी में कहते हैं समष्टि, अर्थात इंग्लिश में यूनिवर्स. आप लोगों के कंफ्यूजन को दूर कर दूं, व्हाटएवर टर्म यू कॉल, आइदर पॉपुलेशन और यूनिवर्स, अल्टीमेटली वी हैव टू सिलेक्ट ए सैंपल.
ओके.
बट सैंपल इज ऑलवेज सिलेक्टेड आउट ऑफ यूनिवर्स, आउट ऑफ पॉपुलेशन. एक छोटा सा उदाहरण लूंगा. कोई रिसर्चर है, वो अपनी यूनिवर्सिटी के 5000 स्टूडेंट में से केवल 1000 स्टूडेंट्स को या 500 स्टूडेंट्स को अपने रिसर्च में इंक्लूड करना चाहता है, सिलेक्ट करता है, वो क्या बन जाएगा? सैंपल.
सैंपल.
वो 5000 या 500 स्टूडेंट क्या बन जाएंगे? सैंपल.
सैंपल.
आउट ऑफ 5000.
500 में से. हाँ जी.
तो 5000 हो जाएगी पॉपुलेशन, और जो प्रक्रिया हो जाएगी वो हो जाएगी सैंपलिंग.
सैंपलिंग.
सैंपलिंग की सबसे अच्छी जो डेफिनेशन दी है, मैं आप लोगों के लिए नोट्स बना रहा था तो देखा मैंने, 1986 में एक बुक आई थी, फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरल रिसर्च. कर्लिंगर ने बहुत अच्छी, बहुत छोटी खूबसूरत परिभाषा दी. Sampling is taking any portion of a population or universe as representative of the population or universe.
Okay.
Sir, please repeat.
Sampling is taking any portion of a population or universe as representative of the population, of that population और यूनिवर्स। इसको हिंदी में और सरल शब्दों में समझाता हूँ आपके लिए।
हिंदी में सर,
एक निश्चित जीव संख्या में से चयन किया गया सदस्यों का समूह प्रतिदर्श कहलाता है। एक निश्चित संख्या में जीव संख्या में से चयन किया गया सदस्यों का समूह प्रतिदर्श कहलाता है।
ठीक है,
आगे चलते हैं हम लोग।
जी,
अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है कि टाइप्स कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ सैंपलिंग।
सैंपलिंग,
टाइप्स ऑफ सैंपलिंग।
ओके सर।
प्रतिदर्शन के प्रकार, प्रतिदर्शन के प्रकार। जब मैं बोल रहा हूँ प्रतिदर्शन तो टी की मात्रा छोटी आएगी, टी की मात्रा छोटी। प्रति, प्रतिदर्शन के प्रकार। जैसे आप सभी लोग पीएचडी लेवल के स्टूडेंटों पर मेरे को चिंता रहती है व्याकरण की भी, व्याकरण में हमारे प्रश्नों को अच्छा होना चाहिए लिखते। तो दो टाइप हमेशा आप भूलिएगा मत, एक होती है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग,
एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग।
हिंदी में कहूंगा जो मेरे हिंदी के सुनने वाले विद्यार्थी हैं, संभाविता, संभाविता प्रतिदर्शन और असंभाविता प्रतिदर्शन। संभाविता बोले तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और असंभाविता बोले तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। क्लियर?
यस सर।
अब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग उसके नाम से क्लियर है।
और अगले रिचार्ज पे ₹1.50 की अतिरिक्त शुल्क के साथ चुकाएं। इमरजेंसी टॉक टाइम ले।
तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो है उसका सबसे तीन कंडीशन इम्पोर्टेंट है उसके अंदर। नंबर वन, नो द साइज। उसको हमेशा आपको जो पॉपुलेशन सैंपल का चयन करने वाले है उसका साइज हमेशा आपको मालूम होना चाहिए, आकार, उसका आकार क्या है। नंबर दो, प्रतिदर्श की वांछित संख्या जो आपने निर्दिष्ट की है, डिसाइड की है। और थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन के प्रत्येक सदस्य को प्रतिदर्श में सम्मिलित किए जाने की प्रोबेबिलिटी बराबर बराबर हो, इक्वल हो, या कम से कम रिसर्चर को मालूम होना चाहिए कि मैं किसको लेने वाला हूं। जैसे भी मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे मालूम है कि मैं पीएचडी की जो इस साल की जो बैच है 2019 की जो बैच है उन्हीं के स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं, कि मेरे ऑडियो लिसनर कौन कौन है ये मुझे मालूम है। इसमें कोई पुराना स्टूडेंट नहीं होगा, या इसमें कोई जिसने एंट्रेंस टेस्ट पास नहीं किया है वो नहीं होगा। तो मुझे मालूम है कि मेरे सैंपल कौन कौन है। तो ये तीन कंडीशन होंगी तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, संभाविता, प्रतिदर्शन। इसका पॉजिटिव फीचर ये है कि इसमें प्राप्त होने वाले प्रतिदर्श क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। सो जो फाइंडिंग मिलती है, इससे जो कन्फाइंडिंग मिलती है वो काफी विश्वसनीय होते हैं। प्रोबेबिलिटी सैंपल के जो फाइंडिंग्स होती हैं, जो कंक्लूजन आते हैं वो बहुत रिलायबल माने गए हैं। तीन तरह की होती है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, तीन तरह की होती है। पहली होती है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सिंपल रैंडम सैंपलिंग हिंदी में बोलते हैं इसको, साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन। दूसरी होती है स्टार्टिफाइड रैंडम सैंपलिंग, स्टार्टिफाइड STARTIFIED, स्टार्टिफाइड रैंडम सैंपलिंग। और तीसरी होती है एरिया और क्लस्टर सैंपलिंग। जैसे अभी अपने कोरोना निकल रहा है ना, तो बोले इस मोहल्ले में निकला, फलाने उज्जैन दक्षिण में, उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में, तो नगर निगम क्या कह रहा है, उस एरिया में निकला, उस क्लस्टर में निकला। तो उत्ते को क्या करते हैं, उत्ते एरिया को क्या क्वारंटाइन कर दिया उन्होंने, उत्ते एरिया को उन्होंने क्या कर दिया, लिमिटेड कर दिया, क्वारंटाइन, उत्ते एरिया को क्वारंटाइन कर दिया। तो इसको हिंदी बोलते हैं साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन हिंदी में, दूसरा बोलते हैं स्तरित यादृच्छिक, और तीसरा बोलते हैं क्षेत्र या गुच्छा। गुच्छा बोले तो क्लस्टर एरिया, गुच्छा गुच्छ क्षेत्र प्रतिदर्शन। अब हम आ रहे हैं दूसरे टाइप की प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ये क्या होती है, इसको बोलते हैं असंभाविता, असंभाविता प्रतिदर्शन। इसमें पॉपुलेशन के सदस्यों को प्रतिदर्श में सम्मिलित किए जाने की संभावना ज्ञात नहीं होती है। इसके अलावा
इस तरह की सैंपलिंग में रिसर्चर पॉपुलेशन को स्पष्ट पहचान करने की चिंता भी नहीं करता है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो अपने कितने सारे बच्चे सुन रहे हैं कितने नहीं सुन रहे हैं, लेकिन मैं अपने लेक्चर कंटिन्यू कर रहा हूं। ये मान के कि राजेश जी सुन रहे हैं, किंजल जी सुन रही हैं, किंजल सुन रही हैं, वेदिका सुन रही हैं, मेरी जो जितने बच्चे अपने यहाँ इनरोल्ड हैं वो सब सुन रहे हैं, तो उनमें से कितनों को मेरी आवाज साफ आ रही है कितनों को आवाज साफ नहीं आ रही है ये मुझे नहीं मालूम। जब लेक्चर खत्म होगा उसके बाद फीडबैक आएगा तो मालूम पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मान ली, अपनी आवश्यकता अनुसार इच्छा अनुसार कुछ सदस्यों को चयन कर सैंपलिंग में शामिल करते हैं, तो क्या बजनती है वो असंभाव्यता प्रतिदर्शन। इसके बारे में 1967 में एक बड़े विद्वान हुए हैं, उनका नाम है सेल्टिज, कोलमैन और सेल्टिज, COLEMAN कोलमैन और सेल्टिज, उन्होंने कम से कम 7 तरह की नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड बताई है। कितने तरह की? 7 तरह की। ये बड़ी आपको काम आएंगी रिसर्च करने में, 7 टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। यदि आपके पास में बॉल पेन या कागज हो तो नोट कर लें आप लोग, 7 तरह की होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। पहली वाली होती है कोटा सैंपलिंग, QUOTA कोटा सैंपलिंग, QUOTA कोटा सैंपलिंग। दूसरी होती है एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल सैंपलिंग। किसी ने आज व्हाट्सएप खोल के देख लिया एकदम कि मेहता सर क्लास लेने वाले हैं 4 बजे और उन्होंने मोबाइल चालू कर लिया अपना, तो क्या हो गया वो इंसिडेंटल सैंपलिंग। तीसरा होता है पर्पसिव सैंपलिंग, उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन। चौथा होता है सिस्टमेटिक सैंपलिंग। जैसे अपन ने सुबह आज 9 बजे नोटिस लगा दिया कि भाई आज हम 4 बजे क्लास लेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप पे ब्रॉडकास्ट कर दिया आपने, PhD वाले ग्रुप पे, सिस्टमेटिक सैंपलिंग। पांचवा होता है स्नोबॉल सैंपलिंग, बड़ा अच्छा नाम है ये स्नोबॉल, ये खेलने की गेंद नहीं होती है, इसका नाम है हिमकंदुक प्रतिदर्शन, स्नोबॉल सैंपलिंग। छठी होती है सैचुरेशन सैंपलिंग, संतृप्ति प्रतिदर्शन। और सातवां होता है डेंस सैंपलिंग, घनीभूत प्रतिदर्शन। कोलमैन एंड सेल्टिज, COLEMAN एंड सेल्टिज, उन्होंने सेवन टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग बताई है, 7 तरह की। यू कैन नोट डाउन, आई विल बी लिटिल स्लो नाउ, नोट डाउन 7 टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ओके, नंबर वन कोटा सैंपलिंग, कोटा QUOTA कोटा, QUOTA कोटा सैंपलिंग। नंबर टू एक्सीडेंटल सैंपलिंग, एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल। ओके, नंबर थ्री पर्पसिव सैंपलिंग। नंबर फोर सिस्टमेटिक सैंपलिंग। नंबर फिफ्थ स्नोबॉल सैंपलिंग, स्नोबॉल। इसको हिंदी में कहते हैं हिमकंदुक प्रतिदर्शन। और छठी होती है सैचुरेशन सैंपलिंग। एंड सेवंथ इज डेंस सैंपलिंग, DENSE, डेंस सैंपलिंग। अब आपको मैं 3 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर समझा रहा हूं। हमेशा आप जब रिसर्च करने जाओगे, आप लोग जब रिसर्च के लिए आप अपना व्हेन यू विल प्रिपेयर योर रिसर्च फ्रेमवर्क, नेवर फॉरगेट दिस थ्री फैक्टर्स। कब? नेवर फॉरगेट दिस थ्री फैक्टर्स वाइल ड्यूरिंग सैंपलिंग। ड्यूरिंग सैंपलिंग. नंबर वन साइज ऑफ पॉपुलेशन. साइज ऑफ पॉपुलेशन. नंबर टू कॉस्ट ऑफ सैंपलिंग. किंजल बहुत ध्यान से सुन रही हैं, सीए करके बैठी हुई हैं. किंजल कॉस्ट ऑफ सैंपलिंग. हाँ कॉस्ट ऑफ सैंपलिंग हमेशा आपकी निगाहें उस पर रहेंगी कि व्हाट इज द कॉस्ट. और थर्ड फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक्सेसिबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन. जब हम सर्वे करने जा रहे हैं तो हमको लोग मिलेंगे. मैं पढ़ाने बैठ गया हूँ पर 23-24 स्टूडेंट में से कितने बच्चे सुन रहे हैं मेरे को. मैंने क्वेश्चन आयर बांट दी, क्वेश्चन आयर को कितने लोग भर के देंगे, उसमें कितने लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे, इसको कितना राइट ढंग से फिलअप करेंगे. तो ये जो तीन फैक्टर हैं ये हमेशा देखना पड़ेंगे. फैक्टर्स टू बी केप्ट ड्यूरिंग सैंपलिंग. ठीक है. अब कई बार एक क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग रिसर्च के अंदर, जब आप लोगों का वाइवा होता है, अभी सेमिस्टर के आखिरी में वाइवा होगा, तो एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या होती है. व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल रैंडम सैंपलिंग. ये आप भूलना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या होती है? साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन. इसमें बहुत ही आसान बताऊंगा आपको मैं तरीके में. द बेस्ट डेफिनेशन इज दैट इट इज सिलेक्शन ऑफ केसेस फ्रॉम पॉपुलेशन. इट इज, लिसन माय वर्ड्स केयरफुली, इट इज सिलेक्शन ऑफ केसेस फ्रॉम द पॉपुलेशन. केसेस, CACS, केसेस, सिलेक्शन ऑफ केसेस फ्रॉम पॉपुलेशन इन सच ए मैनर get every individual in population, every individual in the population has an equal chance of being chosen. equal chance of being chosen. the selection of any one individual is also in no way tied to the selection of any other. एक उदाहरण देता हूं मैं आपको. एक फिश बाउल है, जानते हैं फिश बाउल. फिश बाउल जो होता है, फिश बाउल ड्रा में हर व्यक्ति के नाम या हर व्यक्ति का नाम समान कागज के टुकड़े पे आपने लिख के रख दिया, उसको मोड़ के रख दिया और बॉक्स में डाल दिया. क्या करा आपने उसको? बॉक्स में डाल दिया. पर्ची को मोड़ के आपने क्या करा? बॉक्स में डाल दिया. फिर आपने आंख बंद करके या आंखों पे पट्टी बांध के उस बॉक्स में से कागज के टुकड़े निकाले. 1, 2, 3, क्या हो गया? ये सिंपल रैंडम सैंपलिंग. आया समझ में? आया कि नहीं आया? कि फिश बाउल एक होता है ना, फिश बाउल ड्रा करते हैं, खेलते हैं बचपन में. कि आपने एक बॉक्स बनाया, बॉक्स में डाल दी पर्चियां, चलिए किंजल दो निकालेंगी, दो वेदिका निकालेंगी, दो राजेश निकालेंगे, दो राहुल निकालेंगे, है कि नहीं. तो इस तरीके से आपने जब निकाला तो फिश बॉल ड्रा बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फिश बॉल ड्रा. तो टेबल ऑफ रेंडम नंबर आ गई और आपका साइकोलॉजिकल रिसर्च हो गया. करेगा ये ऐसे अपन वो ग्राउंड के अंदर दोनों कप्तान जाते हैं तो कॉइन टॉस करते हैं, देखा आपने, सिक्का उछालते हैं. विराट कोहली और दूसरा कप्तान, दूसरी टीम का कप्तान गया, हाँ तो ग्राउंड में गए और उन्होंने सिक्का उछाला. तो क्या किया उनने? हेड या टेल जो भी आना है वो आ गया. तो ये क्या हो गया? सिंपल रैंडम सैंपलिंग. तो किसी भी सदस्य का चयन दूसरे सदस्य के चयन से पूर्णतया स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट है, पॉपुलेशन का दूसरा मेंबर इंडिपेंडेंट है अगले मेंबर से। मैं आपको पढ़ा रहा हूं है ना, और पढ़ाते 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 मैंने क्वेश्चन पूछ लिया वेदिका से, ये क्या हो गया, सिंपल रैंडम सैंपलिंग है कि नहीं। तो 1/23 मैं पढ़ा रहा हूं 20 लोगों को, तो क्वेश्चन पूछ लिए 2 लोगों से मैंने, तो क्या हो गया ये सिंपल रैंडम सैंपलिंग। तो इसका फायदा क्या होता है कि प्रत्येक मेंबर ऑफ पॉपुलेशन के चुने जाने की संभावना बराबर हो गई। समझ आया कि नहीं आया। सबसे बेस्ट यह है कि यह जीव संख्या से व्यक्तियों को चुनने का ऐसा ढंग है जिसमें पॉपुलेशन के प्रत्येक व्यक्ति के चुने जाने की संभावना बराबर बराबर होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें 2 विधियां होती है, सैंपलिंग विथ रिप्लेसमेंट, सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, सैंपलिंग विथ रिप्लेसमेंट और सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना। हाँ, जैसे मैंने आपके आपके 23 नाम लिखे हुए हैं, 23 पर्चियां डली हुई है, और मैंने 23 में से एक पर्ची निकाल ली, तो क्या हो गया 1/23, क्या हो गया 1/23। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई कि पहली पर्ची निकालने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं उस पर लिखे नाम को मैं लिख लूंगा कि ये पर्ची किंजल की निकली, है ना। और उसी पर्ची को मैं फिर डाल दूं, है ना, फिर मोड़ के डाल दूं, तो अब क्या हो जाएगा, वो दूसरे व्यक्ति के लिए क्या होगा, फिर से वो एक नया बन जाएगा सैंपल, पूरा फ्रेश सैंपल बन जाएगा वो, है ना। तो ये हो जाएगा सैंपलिंग विथ रिप्लेसमेंट, है ना। लेकिन यदि अपन उससे घटा लें, पर्ची निकाल ली अपन ने दूसरी बार, और अगला जो मेंबर गया तो उसके लिए क्या होगा, 1/22 हो जाएगा वो, है कि नहीं, 1/21 हो जाएगा, दो पर्ची निकाल ली तो 1/22 हो जाएगा वो। तो सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, देखिए आप, सैंपलिंग विथ रिप्लेसमेंट एंड सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट में मुख्य अंतर यह है कि पहले सैंपल में एक निश्चित आकार के सैंपल की संभावित संख्या, कुल संख्या दूसरी संख्या के सैंपलिंग के आकार के सैंपल की संख्या में कहीं ज्यादा होती है। समझ आया कि नहीं आया। पहले सैंपल में एक निश्चित सैंपल की प्रोबेबल टोटल संख्या दूसरी तरह के सैंपल के आकार से कहीं अधिक होती है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। इसके बाद बहुत सारे इसके सब टाइप्स होते हैं जो मैंने आपको नाम बताई दिए थे, इसके अलावा और भी टाइप्स होते हैं। लेकिन आपको जब मैं अपना लेक्चर ख़त्म करूं, उस लेक्चर ख़त्म करने के पहले मेरा दायित्व है कि मैं आपको एक कुछ टिप्स दे दूं, रिक्विजिट्स ऑफ ए गुड सैंपलिंग मेथड। क्या बोल रहा हूं मैं, रिक्विजिट्स ऑफ ए गुड सैंपलिंग मेथड, रिक्विजिट्स ऑफ ए गुड सैंपलिंग मेथड, रिक्विजिट्स ऑफ ए गुड सैंपलिंग मेथड। नंबर वन, इट मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव नेचर ऑफ सैंपल, इट मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव नेचर ऑफ सैंपल। जैसे मान लीजिए अपन उदाहरण लेते हैं, है ना, 10,000 स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट टोटल कितने हैं, 10,000, कुल स्टूडेंट 10,000 हैं, उसमें से 6,000 स्टूडेंट्स क्या हैं, मेल हैं, और 4,000 फीमेल हैं। अब 6,000 जो मेल हैं उसके अंदर से 4,000 यूजी के हैं और 2,000 पीजी के हैं, फीमेल कितनी थी, 4,000 थी, उसमें से भी क्या है, फीमेल के अंदर भी आना चाहिए, आउट ऑफ 4,000 3,000 फीमेल यूजी हैं और 1,000 पीजी हैं। तो इस प्रकार से यदि कोई रिसर्चर काम कर रहा है तो उसको बराबर बराबर रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेना चाहिए, बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव लेना चाहिए, है कि नहीं। कोई रिसर्चर मान लो 10,000 स्टूडेंट में से 1,000 का चयन करता है तो 600 मेल 400 फीमेल हो गए, फिर 600 मेल में से 400 यूजी के और 200 पीजी के, और गर्ल्स में से 400 में से 300 फीमेल और 100 पीजी फीमेल, इस तरीके से उसको बोलेंगे हम लोग रिप्रेजेंटेटिव नेचर ऑफ टेम्पल। तो आप जब रिसर्च करने जाओगे तो यू मस्ट सिलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव नेचर ऑफ टेम्पल। और जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो रिक्विजिट है वो है एडिक्वेट साइज ऑफ सैंपल। नोट डाउन, एडिक्वेट साइज ऑफ सैंपल, एडिक्वेट पर्याप्त आकार। जब भी आपका सैंपल साइज ज्यादा होगा तो सैंपल एरर की संभावना कम हो जाएगी, ध्यान रखना आप लोग। सैंपल हमेशा ज्यादा लीजिए, क्या कह रहा हूं मैं, हाँ, हमेशा सैंपल का आकार बड़ा रहने से सैंपल एरर की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। बहुत सारी फाइंडिंग से क्लियर हुआ है कि साइज ऑफ सैंपल और सैंपलिंग एरर में बहुत निगेटिव रिलेशनशिप है। देयर इज ए निगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन सैंपलिंग एरर एंड साइज ऑफ सैंपल। या मैं और सरल शब्दों में कह रहा हूं आपको, जैसे जैसे सैंपल का आकार बढ़ेगा वैसे सैंपल एरर की संख्या कम होती जाएगी। क्या कह रहा हूं मैं, जैसे जैसे सैंपल का आकार बढ़ेगा आपका सैंपलिंग एरर क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रिक्विजिट थी, एडिक्वेट साइज ऑफ सैंपल और रिप्रेजेंटेटिव नेचर ऑफ सैंपल, है ना। तो सैंपलिंग के तीन बहुत इंपॉर्टेंट फायदे भी हैं। मैं लेक्चर खत्म करने के पहले, अपना आज की टॉक बंद करने के पहले तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा आपको मैं, चैप्टर को समराइज करने के पहले तीन कॉमन एडवांटेजेस ऑफ सैंपलिंग। नंबर वन, एक क्वेश्चन आपके मन में बन रहा होगा, सर इतना आप सैंपलिंग पे स्ट्रेस क्यों दे रहे हैं, व्हाई यू आर टेकिंग लेक्चर ऑन सैंपलिंग। तो समरी कर रहा हूं मैं, सैंपलिंग ऑलवेज इंक्रीजेस एक्यूरेसी ऑफ योर फाइंडिंग्स। क्या करती है ये, हमारे रिसर्च की शुद्धता को बढ़ा देती है। या सैंपलिंग ऑलवेज इंक्रीजेस एक्यूरेसी ऑफ योर रिसर्च वर्क इससे हमारी अध्ययन की परिशुद्धता बढ़ जाती है। इससे हमारी रिसर्च फाइंडिंग की, हमारे रिसर्च की परिशुद्धता या एक्यूरेसी बढ़ जाती है। नंबर दो, सैंपलिंग करने से कॉस्ट रिड्यूस होती है। सिस्टमेटिक सैंपलिंग करेंगे तो आपकी कॉस्ट क्या होगी, हमेशा रिड्यूस हो जाएगी। हाँ, तो आप डाटा कलेक्शन में अपना कुछ, डाटा कलेक्शन में, प्राइमरी डाटा कलेक्शन में, सेकेंडरी डाटा कलेक्शन में, वेब डाटा कलेक्शन में, ऑफलाइन डाटा कलेक्शन में कॉस्ट को कम कर सकते हैं। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेविंग ऑफ लेबर एंड टाइम। तो ये सब मैंने प्रयास किया कि आपको सैंपलिंग के बारे में कुछ एक अपना एक प्रेजेंटेशन दूं। एक ऑडियो लेक्चर मैंने लिया है जिसमें आपको मैंने सैंपलिंग के बारे में, सैंपलिंग के टाइप्स के बारे में, सैंपलिंग की रिक्विजिट्स, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, टाइप्स ऑफ सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग, इनके बारे में अपन ने कुछ आउटलाइंस टच की है। एंड आई होप वॉट एवर टेक्निकल लिमिटेशंस थी अपने पास में, but your encouragement, your courage to attend my this online audio lecture, I appreciate. I convey my big thank you to your parents. Take care of her. Yes. So just keep on studying. I am also sending you a lot of UGC links. Swayam portal भी चालू है UGC का, है ना, DTH चालू है। मैंने मॉर्निंग में समझाया भी था आप लोगों को, आज मॉर्निंग में मेरी बात हुई थी किंजल से, मैंने एक छोटा सा उससे ऑनलाइन काउंसिलिंग की थी। तो मैं सबको कह रहा हूँ कि DTH पे जाइए, DTH पे दूरदर्शन का जो छतरी है और ये डिश टीवी है उस पर भी फ्री टू एयर चैनल चल रहे हैं। उस पर बैंड नंबर लिखा हुआ है, मैंने किंजल को इन लोगों को सबको भेजे हैं, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल भी गया होगा सबको डिटेल पूरा। आपने फॉरवर्ड किया सभी को व्हाट्सएप ग्रुप में, फॉरवर्ड किया आप लोगों ने, हाँ तो कर दीजिए उसको। नहीं, आपने रिसर्च वाले व्हाट्सएप पे भेजा ना, मैंने DTH के डिटेल भेजे, मैंने येलो कलर में आया पूरा, देखो उसको आप, येलो कलर पेंट किया मैंने अभी 8 दिन पहले भी किया था। ठीक है, कीप स्टडिंग एंड लेट अस प्लान इन ए मोर बेटर वे, मोर स्ट्रक्चर्ड वे. ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट.
ओके.